मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ा रहा हूं, बावजूद इसके कि आज मेरे पास आप सबको बताने के लिए कुछ खबरें हैं। लेकिन फिलहाल जिस विषय की मैंने शुरुआत की है, चूंकि वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गहरा भी है, जरूरी भी है, और सच पूछिए तो इस तरह के गहरे और जरूरी विषय चूंकि एक कंटिन्यूएशन की मांग करते हैं, इसलिए फिलहाल मैं उन खबरों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। यदि उनके बारे में हम एक दिन देरी से भी बात कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि हमने आज ब्रेक दे दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मैं पूरी क्षमा याचना के साथ कल के ही विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने आप सबको एक अंश दिया था और आप सबसे कहा था कि आप इसे अपनी अपनी तरफ से 10 में से नंबर देने की कोशिश करें और फिर मुझे मेल लिख करके जो आपने नंबर दिए हैं उसे जस्टिफाई करें, उसका औचित्य सिद्ध करें। अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भाषा में बात करें तो कल जो मैंने आपसे प्रशंसा व्यक्त की थी कि बहुत लोगों ने मेल लिखे, आज उससे 2.5 गुना में ज्यादा प्रशंसा व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि अब जो मेरे पास मेल की संख्या है वो कल की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। तो 2.5 गुना ज्यादा मेल, 2.5 गुना ज्यादा प्रशंसा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज भी जो मेल मिले हैं, सच पूछे तो उनका जो चरित्र है वो कल की तुलना में कोई अलग नहीं है, बातें लगभग लगभग वही सी हैं। लेकिन जो एक मेल मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, उतनी सटीकता के साथ आज मुझे पास कोई मेल नहीं है जिसे मैं रिपीट कर सकूं। वो मेल बहुत ही सटीक मेल था, नाम मैं एक बार फिर से लेना चाहूंगा, जिज्ञासा मीना का मेल। दोस्तों, कुछ मेल डेफिनेटली ऐसे मिले हैं जिसमें मार्किंग बहुत सही की गई है, किसी ने 0 नंबर भी दिए हैं, किसी ने 1 दिए हैं, किसी ने 2 दिए हैं, लेकिन जब मैंने उनके टाइमिंग्स देखे तो वो कल थोड़े से देर के समय के लिखे हुए मेल हैं, तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि शायद जब वे मेल उन्होंने लिखे हों तो उससे पहले कल के डेली ऑडियो लेक्चर को वो सुन चुके हों। लेकिन यदि ऐसा नहीं था, बिना डेली ऑडियो लेक्चर सुने उन्होंने अपना मूल्यांकन किया है, तो इसके लिए वे सब के सब अद्भुत रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। चूंकि मेरे लिए अंतर कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूं। आइए अब हम कुछ बातें करते हैं, खासकर कल और आज, इन दोनों स्थितियों को लेकर। दोस्तों, एक पॉइंट आप जरा इस पर विचार करें कि जब परसों मैंने अंश पढ़कर सुनाया था तो कुछ लोगों के मेल कल शामिल कर लिए गए, यानी कि उन्होंने डेली ऑडियो लेक्चर सुना, प्रेस क्लिपिंग्स जो वहां डाली गई होगी शायद उसे पढ़ा भी होगा, और पढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे दी, जिनके मेल कल शामिल कर लिए गए। आज भी मेल मिले हैं, 2.5 गुना ज्यादा मेल मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे परसों समय से मेल नहीं लिख सके, समय से डेट वही थी। मैंने बहुत से मेल ऐसे देखे जो डेट तो वही है लेकिन थोड़े से बाद में लिखे गए, और उसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने ऐसा अनुरोध नहीं किया था। लेकिन हम तो यहां एक मूल्यांकन कर रहे हैं, बात सही और गलत की नहीं है, हम स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो मेरे पास मेल है वो 2.5 गुना ज्यादा है। अब सवाल एक मेरा छोटा सा है, आप सबको अपने अपने स्तर पर विचार करना है, मुझे इसका उत्तर नहीं चाहिए, वो ये कि वे कौन लोग थे जिन्होंने तुरंत जवाब दिए, और वे कौन लोग थे जिन्होंने तारीख तो वही चुनी लेकिन थोड़े से चूक गए, और वे कौन लोग थे जिन्होंने उसे 1 दिन के लिए टाल दिया, यानी कि कल उन्होंने मेल लिखे। वे कौन लोग थे, आप किस में शामिल हैं, अपने आधार पर आप मूल्यांकन कीजिए कि यदि आपने देरी की है तो वो देरी क्यों हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रतियोगिता का क्षेत्र है, याद रखिए। दौड़ने वाले बहुत से लोग हैं और जो पीछे रह भी गए हैं वे भी फिनिशिंग लाइन को तो टच करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि 3 लोग जिन्हें मेडल अब मिलना है और वहीं बाकी जो दौड़ रहे हैं रुक जाएंगे क्योंकि अब तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, मेडल तो उनको मिल गया तो क्या फायदा है, वहीं रुक जाएंगे या वापस लौट जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। फिनिशिंग लाइन को तो वे भी टच करते हैं लेकिन उन्हें मेडल नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि कल भी जिन्होंने मेल्स लिखे फिनिशिंग लाइन तो उन्होंने भी टच की, लेकिन अगर हम प्रतियोगिता की भाषा में बात करें तो वे इससे बाहर हो चुके हैं। आपको इस पर विचार करना होगा, क्योंकि याद रखिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता होती है वहां क्वांटम फिजिक्स काम कर रहा होता है, और जितनी कठिन प्रतियोगी परीक्षा होगी क्वांटम फिजिक्स का रोल उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्वांटम फिजिक्स कहने का अर्थ है कि हमारी जो चेतना है उस चेतना का स्वरूप क्या है, कितनी बारीकी से वो चेतना काम कर रही है, कितने सूक्ष्म चीजों को भी वो महत्व दे रही है, वहां क्वांटम फिजिक्स आता है। पहली बात। दूसरी बात कि कल मैंने कुछ बातें आप सबके सामने रखी थी, कुछ खुलासा किया था आंसर राइटिंग को लेकर के। आप लोगों में से ही बहुत से थे जिन्होंने 10 में 10 नंबर दिए, आप लोगों में है किसी ने 8 दिए, किसी ने 7 दिए, और खासकर मेरा कल का जो संबोधन था वो इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने इतनी हाई मार्किंग की है। तो कल मैंने इतने हाई मार्किंग को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा था कि अगर मुझे मार्क्स देने हो तो मैं 0 दूंगा, और यदि निगेटिव मार्किंग होता तो मैं निगेटिव मार्किंग देता, क्योंकि वहां लफाजी के सिवाय कुछ नहीं है। लफाजी इस सेंस में कि शीर्षक कुछ है, यानी कि प्रश्न कुछ पूछा गया है, लिखा कुछ जा रहा है। हां, यदि प्रश्न ये होता कि गीता की प्रशंसा कीजिए, यशोगान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तब वो उत्तर ठीक था, लेकिन ऐसा तो था नहीं। इसका मतलब है कि जिनके उत्तर भी आउटराइट रिजेक्ट हो गए, क्या उन्होंने अपने को इवेल्युएट किया, अपने बारे में सोचा? एक मुझे मिला है, एक ऐसा मेल मुझे मिला है जिसमें उन्होंने अफसोस व्यक्त किया है, अफसोस जाहिर किया है कि मैं ऐसा क्यों नहीं समझ पाई, मुझे समझना चाहिए था कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उत्तर तो प्रशंसा में लिखा गया है और मुझे इसका बहुत अफसोस हो रहा है। अगर इतनी बात भी रियलाइज हो गई है तो मैं समझता हूं कि काफी है, आगे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन इतने सारे मेल में केवल एक ही मेल ऐसा है। चलिए, मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने भी रियलाइज किया होगा, लेकिन मेल्स लिखना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, और कोई जरूरी भी नहीं है कि आप मेल्स लिखें। लेकिन अगर आपने अपना मूल्यांकन नहीं किया, यानी कि फिर से आपने उस अंश को नहीं पढ़ा, दोबारा मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को नहीं सुना, और सुनने के बाद अपने लिए कुछ पॉइंट्स निर्धारित नहीं किए कि मुझे इस पर काम करना है, तब फिर मान करके चलिए कि आगे कुछ भी नहीं होना है, कोई भी बदलाव नहीं होना है, चीजें ज्यों की त्यों ही रहेंगी, और आप इसी तरह से गलत चीजों के शिकार होते रहेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा की जो छटनी है वही वास्तविक छटनी है, जो रियल एग्जामिनेशन है वो तो मेंस ही है। प्री तो केवल एक एंट्री गेट जैसी है कि आपको एक तरह से पास मिल गया कि ठीक है जाओ मुख्य परीक्षा में बैठ जाओ। दोस्तों, इसके बारे में आप सोचिए। तीसरी बात यहां जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इस तरह की गलतियां हमसे होती क्यों हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि ये पढ़ने का मामला है कि आप पढ़ते किस ढंग से हैं। मुझे मालूम है कि जो आईएएस की तैयारी कराने वालों में जो दुनिया भर के पढ़ने की बात करते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से मेल्स आने लगे हैं कि सर इतना पढ़े, लोग ये कहते हैं, हम तो भ्रमित हो गए हैं, आपके ऑनलाइन में तो इतने सारे हैं नहीं, फलाना चैप्टर नहीं है, वो कहता ये चैप्टर भी होना चाहिए। तो ठीक है, आप कर लीजिए उस चैप्टर्स को, पढ़ लीजिए उनको। वो जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इतना पढ़ना चाहिए, क्या आपने उनके कहे हुए को चेक किया है कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या सीधे सुन लिया है और कह रहे हैं? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट को मैं हर महीने एक मंथली मैगजीन जैसा कह लीजिए कि प्रोवाइड करता हूं, करेंट अफेयर्स पर एक कलेक्शन होता है जो लगभग एक घंटे से सवा घंटे का होता है, और वो बोलने के अंदाज में होता है, और जहां तक मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मुश्किल से 15 जो इवेंट्स होते हैं वो प्री की दृष्टि से एनालाइज किए हुए होते हैं, और 4-5 ऐसे होते हैं जो मेंस की दृष्टि से एनालाइज किए हुए होते हैं, और 4-5 संदर्भ के लिए मैं देता हूं जिन्हें वो कोट कर सके, डेटा वगैरह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वगैरह को लेकर। तो कुल मिलाकर के अगर आप इन्हें जोड़ दें तो करीब 20-25 के आसपास होता है घटनाएं। बस सीधी सी बात है कि जब आप इस तरीके से फोकस्ड रूप में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सोचने के लिए स्पेस रहेगी, और इसी करंट अफेयर्स को लेकर के ऑलमोस्ट कह लीजिए, ज्यादातर तो करंट अफेयर्स ही होते हैं, उसमें दूसरी बातें भी होती हैं, निबंध पर है या किसी सब्जेक्ट को लेकर के कर देते हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं। आपको मैगजीन मिलती है करंट अफेयर्स को, मैगजीन के पेजेस गिनिए कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड कितने पेजेस हैं। इसका मतलब है कि वहां बिखराव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिखराव है। तो जब आप बिखराव वाली चीजें पढ़ेंगे देखेंगे तो सीधी सी बात है कि दिमाग भी उसी तरह से चलेगा, दिमाग भी बिखरेगा, कंसोलिडेट तो नहीं होगा। और पता चला कि आंसर राइटिंग के समय में जब आपको अपने दिमाग को कंसोलिडेट करना चाहिए आप कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो बिखरा बिखरा सा है और ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट है। तो दोस्तों इसीलिए जो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं यही कहता हूं कि नहीं, फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इवेंट्स के बारे में जानकारी लेनी है, और साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि इनमें से किन किन बातों पर फोकस करना है। और मैं खासकर अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब भी आपको इस तरह से करंट अफेयर्स पर कलेक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो प्लीज एक महीने का आप कलेक्शन ले लीजिए और उसी महीने से रिलेटेड आप मैगजीन उठा करके देखिए, और जो मैं देता हूं उसके एक इवेंट को लीजिए और उस इवेंट के बारे में जो मैगजीन में लिखा गया है उसे लीजिए और दोनों को आप मिला लीजिए। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दोनों में वास्तव में क्या अंतर है। और जो मैं फोकस्ड स्टडी कह रहा हूं कि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उसमें से क्या क्या पढ़ना है, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी बात। और यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो आंसर राइटिंग का तरीका है वो ज्यादा सही के करीब पहुंच सकेगा। तो दोस्तों अब इस टॉपिक पर बस इतना ही। हां, यदि आप लोगों के मन में और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप लोग बिल्कुल ईमेल लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, संभव हो सका तो हम लोग आगे भी इस पर बात करेंगे, बशर्ते कि आप लोग प्रश्न पूछेंगे तब, अन्यथा मेरी ओर से यह जो टॉपिक है ये समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स तो मैं आप सबको प्रोवाइड ही कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अभिषेक कुमार मुजफ्फरपुर से, शिल्पा जैन विदिशा मध्य प्रदेश से, दिव्या सोनी जयपुर से, प्रतीक्षा पांडे भोपाल से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, और आकांक्षा शर्मा कानपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।